Blessed Savior, Om Namah Siddhevyah, Om Namah Siddhevyah, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam, Antai Macharahiya, Jai Jaramaranananta Poratha, Samsaralayatamaham, Jaina Chinna Jinam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति, उसमें हम 51 पृष्ठ पर आ गए हैं। 51 अंतरानुगम की बात चल रही है और हमने उत्कृष्टानुगम देख लिया है। अब जघन्य स्थिति का अंतर देखने जा रहे हैं। ओघ की अपेक्षा जघन्य स्थिति का अंतर नहीं हो सकता, तो अजघन्य का भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि अनादि से अजघन्य है और दसवें गुणस्थान जो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय, उसके अंतिम समय में जघन्य होगा, तब तक तो अजघन्य है। जघन्य होने के पश्चात दोबारा अजघन्य होता तो अंतर हो जाता, वैसे ही जघन्य के बाद दोबारा और जघन्य हो जाता तो भी अंतर प्राप्त हो जाता, परंतु ओ की अपेक्षा ना जघन्य का अंतर है और ना अजघन्य का अंतर है। अब यहाँ पढ़ते हम, जघन्य स्थिति अंतरानुगम प्रकृत है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनीय की जघन्य और अजघन्य स्थितियों का अंतरकाल नहीं है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकी, अभी जो आदेश की अपेक्षा लेना है, तो कहाँ कहाँ अंतर नहीं हो सकता, ऐसी मार्गणा यहाँ बताई है कि जघन्य का भी और अजघन्य का भी अंतर नहीं होता, ऐसी ये मार्गणा है। कौन कौन सी है? दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी, यहाँ ऐसा सोचना है कि इनका जघन्य कब होता है, तो उत्कृष्ट आयु के साथ आया है, वो सम्यक तो प्राप्त किया वगैरह वगैरह, और फिर आयु के अंत में उसका जघन्य होता है, इसलिए ना जघन्य का अंतर होगा ना अजघन्य का अंतर होगा। अंतर क्यों नहीं इतना सोचना है ना हमको। फिर सभी पंचेंद्रिय ऐसा हो, यह अलग चाहिए, उसमें जोड़ करके लिखा है पंचेंद्रिय, आधा यो है ना, पूरा यो करना। सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी कैसे होता है जघन्य? तिर्यंच अकेले पंचे, हाँ हाँ, तो शुरू में होगा, देखो निकालना जघन्य का स्वामित्व, बाईस पृष्ठ पर एकेंद्रियों में से जो आया है, एकेंद्रियों में जिसने जघन्य स्थिति की है, जिसको हत समुत्पत्ति कहते हैं, और वहां से जो पंचेंद्रियों में आया है और दूसरे विग्रह में स्थित है, पहले या दूसरे विग्रह में, इसलिए कहते सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच सभी मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों में तो दसवें के सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होता है। ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव सभी विकलेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय सभी त्रस, पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी, काय योगी औदारिक काय योगी, वैक्रियक काय योगी वैक्रियक मिश्र काय योगी, आहारक काय योगी आहारक मिश्र काय योगी, उनका जघन्य तो अंतिम समय में होता है। पांच मनोयोग पांच वचन योग में जो जघन्य है वो तो दसवें के अंत में घटित होगा। सामान्य से कहेंगे तो काय योगी, और फिर उसके डिटे और उसमें भेद करके कहेंगे सभी लिए ना आगे, औदारिक वैक्रिक वैक्रिक मिश्र आहारक काय योगी आहारक मिश्र काय योगी, स्त्री वेदी पुरुष वेदी नपुसक वेदी अपगत वेदी, सब क्रोधादि चारों कषाय वाले, अकषायी विभंग ज्ञानी आभिनिबोधिक ज्ञानी, क्योंकि ये वेद वालों में तो हमने देखा था वेद के उदय के अंतिम समय में था क्षपक श्रेणी में, इसलिए उनका भी फिर लौटकर अंतर नहीं होगा। अकषायी विभंग ज्ञानी आभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी, संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्रायिक संयत यथाख्यात संयत संयता संयत चक्षु दर्शन वाले अचक्षु दर्शन वाले अवधि दर्शन वाले तीन देशा वाले भव्य सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि संगी और आहारक जीवों के कहना चाहिए। लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी, अब हम विशेषार्थ में देखेंगे अलग से अलग को एक एक को। ते ओग से मोनी की जघन्य स्थिति क्षपक जीव के दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में होती है, अतः ओग से जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतरकाल नहीं बनता। ये तो ओग की अपेक्षा बता चुके थे, यह विशेषार्थ में दोबारा बता रहे हैं। इसी प्रकार अभी जहां जहां क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है ऐसी मार्गणाएं बताएंगे, तो मनुष्य यानी सामान्य मनुष्य कहेंगे मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नहीं, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त यानी यहाँ पंचेंद्रिय इन जनरल लेना, तिर्यंच की बात नहीं यहाँ पर, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी, काय योगी औदारिक काय योगी, अपगत वेदी लोभ कषायी, क्योंकि वो क्षपक सूक्ष्म राम सांप्राय का लोभ कषाय का है अंतिम समय, आभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी, संयत सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, संयतों में सूक्ष्म सांप्राय संयत वाले को लिया, वो अंतिम समय में जो क्षपक जहां घटित होता है उसकी बात है, चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी अवधि दर्शनी शुक्ल कुल बराबर करना शुक्ल लेशा वाले भव्य सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि संगी और आहारक के ले जाना चाहिए, क्योंकि इनमें भी क्षपक का दसवां गुणस्थान पाया जाता है। ऊपर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसमें से ऐसी मार्गणा है कि जहां क्षपक का दसवां गुणस्थान है। अब अन्य भी जो जो बताई है वहां पर कि जहां अंतर नहीं होता इसी के लिए है, वहां क्षपक का सवाल नहीं है, उस मार्गणा के योग्य जो जघन्य होगा उसका अंतर नहीं है। तो ऐसी कौन से हमने देखे ना, नरकों में क्या होता है छठी दूसरी से लेकर नीचे तक आयु के अंत में होता है, इसलिए यहां लिखते हैं दूसरे नरक से छठे नरक तक नारकी, ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव असंगी से आया है तो पहले समय में अजगण्य, दूसरे समय में जगण्य और फिर तीसरे समय में अजगण्य, ऐसा ही पहले नरक में भी होगा, इसलिए उसको छोड़ा है। सो ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव ज्योतिषियों में असंगी उत्पन्न नहीं होते। हाँ, वैकृत काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी, क्योंकि जब वो उत्पन्न होते हैं तो वैकृत काय योग नहीं, ना ही वैकृत मिश्र भी है। आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी, क्योंकि इनके भी जगन्य है वो अंतिम समय में पाया जाता है। ओ कषायी, ओ कषायी में भी जगन्य स्थिति कब होगी, उस गुणस्थान के अंतिम समय में। परिहार विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि संयत एक शब्द है, कॉमन सा, केवल संयत नहीं लेना, परिहार विशुद्धि संयत, यथाख्यात संयत, संयता। हाँ, अवकषायों में जघन्य स्थिति, ग्यारहवें में एंटर होने पर जितनी होगी एक एक निषेक गल जाएगा अंतिम समय में। उसके योग्य जगन्य, अभी हमारा मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, जिस अभी हमने नरकों में लिया कि नहीं लिया, नरकों में कब जगन्य घटित किया, अंतिम समय में। ऐसे अकषाय गुणस्थान के योग्य जगन्य कहाँ है, मार्गणा में जब घटित करते हैं। आपका क्या प्रश्न है? हाँ, जब कभी होगी, परंतु कब होगी, उसके अंतिम समय में होगी, उसकी अकषाय मार्गणा चालू रखनी चाहिए। नीचे आता है तो सकषाय हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। ग्यारहवा रहते हुए उसको मिनिमम चाहिए, यानी किसी एक जीव की अपेक्षा लेते हैं, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा नहीं लेना है। कौन से जीव है वो स्वामित्व में आएगा, परंतु कब होगा तो अंतिम समय में ही घटित होगा। उसके लिए कंडीशन डालो कि जो पहले एक बार करके आए दोबारा आया वगैरह वगैरह। यानी जो पहले ऑलरेडी स्थिति घटाकर आया है ऐसा भी जीव ग्यारहवें के अंत में ही उसका जगन्य होगा, इसलिए उसका अंतर घटित नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं। समझ में आए? निकालो स्वामित्व अकषायी जीवों का। अभी हमने कौन सा पेज देखा था? यहाँ लेना है हमें अकषायी 24 पृष्ठ पर। अकषायी जीव में मोहिनि की जगन्य स्थिति सत्व किसके होता है, ये स्वामित्व में आता है, परंतु होता कब है तो हम कहेंगे अंतिम समय में होता है। तो जो क्षायिक समय दृष्टि अकषायी जीव है उसके अंतिम समय में मोहिनि का जगन्य स्थिति सत्व होता है, क्योंकि पहले उसने स्थिति सत्व घटाया है जब क्षय किया था। और भी जो हमने मार्गणा देखी ना, जरा देख लेना, ये काय योगों की बात हमने 23 पृष्ठ पर देखो, अलग अलग योगों में। वैकृत काय योगी जीवों में मोहिनि की जगन्य स्थिति किसके होती है, 23 पृष्ठ पर 38 नंबर का पॉइंट, कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशांत गुणस्थान से सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ तथा जो अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय में वैकृत काय योग में विद्यमान है, वो सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले वैकृत काय योगी जीव के मोहिनि का जगन्य स्थिति सत्व होता है। वो अपनी अपनी दो बार क्यों कहा? अपनी अपनी नहीं, अपनी चाहिए, क्योंकि उन्हें एक ही उत्कृष्ट है ना, वही जो है वही है, दो बार अपनी लिखा है ना। नहीं यहाँ नहीं, वो अपराजित में हो सकता है, बाजू के जो चार विमान है ना उसमें ऐसा है, परंतु सर्वार सिद्धि में तो 33 सागर पूरा, एक समय भी कम नहीं, अपनी उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय में। वैकृत कायोग में विद्यमान है, उस सर्वार सिद्धि में रहने वाले वैकृत कायोगी जीव के, यानी वैकृत कायोगी वालों में जगन्य किसका है? यदि देवों में अपने अपने अगर विशिष्ट स्वर्ग की बात करने हैं तो उस स्वर्ग की जो आयु है उसके अंतिम समय में कहेंगे, उत्कृष्ट आयु के। यह हमने सर्वार सिद्धि वालों को लिया है। और कैसा जीव लिया है? क्षायिक समय दृष्टि और उपशांत गुणस्थान से वहां गया है। वैकृत मिश्र में किसके होती है? अभी ऐसा ही जो पहले घात करके आया है, और वो वैकृत मिश्र के अंतिम समय में होगा, वहां भी ऐसा लिया। क्षायिक समय दृष्टि जी उपशांत गुणस्थान से आकर देव में उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ कौन से देव में उत्पन्न करना, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो उपशांत कषाय में मरेगा तो ऊपर ही के स्वर्गों में जाएगा। परंतु यहाँ तो आयु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैकृत मिश्र का काल अंतर्मूर्त है, उसके अंतिम समय में घटित करना है, मिश्र के अंतिम समय में। अब देखो आहारक कायोगी की बात कर, आहारक कायोगी में कितना जगन्य स्थिति सत्व किसके है? क्षायिक समय दृष्टि आहारक कायोगी तदनंतर समय में मूल शरीर में प्रवेश करेगा। अब आहारक मिश्र में किसको लेना? ऐसा एक क्षायिक लेना और आहारक मिश्र का अंतिम समय लेना। अब यहाँ आते अपने मूल लिस्ट पर, 51 पृष्ठ पर, 52 पर गए थे। देखो परिहार विशुद्धि में भी हमने हम देख लेते हैं, परिहार विशुद्धि में वहां भी ऐसा ही समझना, वहां अंतिम समय में लेना है उसको। पृष्ठ संख्या 24, यहाँ वो 41 नंबर का जो पॉइंट है, हाँ वो सामयिक वाला जो है ना पैराग्राफ, उसमें चौथी लाइन, दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर अनंतर जिसने दर्शन मुनि का क्षय किया, ऐसा जो क्षायिक समय दृष्टि जीव देवों में उत्पन्न होकर वहां 33 सागर प्रमाण आयु को समाप्त करके उसके बाद फिर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ है, जिस प्रकार आगम में बताया उसके अनुसार परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त हुआ है, उस परिहार विशुद्धि संयत के अंतिम समय में। अंतिम समय कब लेना उसका? हाँ, जब वो श्रेणी चढ़ेगा, उसके पहले, क्योंकि अभी एक शायिक है और जाके आया है तो उसी भाव में जाने वाला है मोक्ष। अपना पृष्ठ संख्या 52 पर, इसमें से बहुत सारी बातें हमने देखी है ना, वैकृत मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कषाय, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात संयत, जैसे अभी हमने 11वें में घटाया था। यहाँ देखना है यथाख्यात, अभी जो हम 24 पृष्ठ पर देख रहे थे, यथाख्यात संयतों में जैसे अकषायी जीवों में जैसा है क्षायिक अकषायी, वैसे यथाख्यात में घटित करना, ऐसा इन्होंने अलग से नहीं लिखा है, परंतु संयता संयतों का लिखा है। देखो कि जैसे परिहार विशुद्धि संयतों का देगा और वहां से वो संयता संयत हुआ, और संहिता संहित का अंतिम समय, अंतिम समय ने भी वो ऊपर के गुण स्थानों में चला जाएगा, सातवें में जाएंगे। संहिता संयत, अब आगे वेदक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि। वेदक समय दृष्टि में कैसे लेना है? हाँ, जो क्षायिक होने जा रहा है, कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय, तभी उसका है ना जगन्य। हाँ, उपशम समय दृष्टि में यहाँ द्वितीय उपशम लेना। द्वितीय उपशम में श्रेणी चढ़कर आया है, नीचे आया है, और फिर स्थिति गलना के बाद वो भी वेदक होने जा रहा है, ऐसा जीव लेना उपशम समयत्व का अंतिम समय। सासाधन समय दृष्टि, अभी जो सासाधन हुआ है और अंतिम समय में मुनि का जघन्य स्थिति सत्व होगा, सासाधन का अंतिम समय। सासाधन का जो कोई काल है, एक समय होगा तो एक समय, परंतु जघन्य किसके होगा, तो सासाधन में जो रहने का उत्कृष्ट काल है उसमें अंतिम समय घटित करना। अब ये जो हम लिस्ट पढ़ी है, इनके अपने अपने उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय में ही मोहिनी की जघन्य स्थिति होती है, अतः इनके यहाँ आयु लिखा है, अपने अपने मार्ग ना लेना, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि का अंतिम समय है, वेदक सम्यक्त्व का अंतिम समय है, तो उस मार्गणा का अंतिम समय है, तो अपने अपने उत्कृष्ट काल के लिखो तो अच्छा है, यानी उस मार्गणा का उत्कृष्ट काल लेना। अभी हमने देखा ना, सासाधन सम्यक्त्व का अंतिम समय है, अकषाय का अंतिम समय है, आहारक मिश्र का अंतिम समय, वैकृत मिश्र का अंतिम समय, इस तरह से देवों में वैकृत कायोग में देवों का पूरी आयु का अंतिम समय है, तो अपने अपने काल का लिखना, अपने अपने उत्कृष्ट काल के अंतिम समय में ही मोहिनी की जघन्य स्थिति होती है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं होता। जघन्य स्थिति नहीं होती है, नहीं कहा उनका अंतर कब घटित होगा, कि दोबारा वो हो जाए तो, पर अभी वो अंतिम समय है मार्गणा का, अभी मार्गणा बदलने वाली है, अभी जो देव है वैकृत आयुगी अभी वो मनुष्य में आए गए, इसलिए वो अंतिम समय के पश्चात दोबारा वो अजघन्य हो या जघन्य हो ये बात नहीं घटित हो। अब जो अन्य जो लिस्ट में रहे थे, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, अभी जो अभी हमने लिस्ट देखी थी वो अपनी अपनी अपने काल के अंत में, अब ये जो लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो अलग लिस्ट है, इसमें भी अंतर नहीं, ऐसी ही लिस्ट है, उसका कारण अलग है। कौन कौन है अभी ये? सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त कौन के उत्पन्न होते समय ही जघन्य स्थिति होती है, अतः इनके भी अंतर नहीं होता। पहले ही समय, उत्पन्न होने के पहले समय में है, दोबारा इतना जघन्य फिर नहीं होगा उनके, इसलिए उसमें अंतर नहीं होता। स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुसकवेदी, क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों के नौवे गुणस्थान में अपने अपने क्षय के अंतिम समय में, और सामायिक संयत, अब यहाँ क्षय के अंतिम समय में स्त्रीवेदी का जब उदय है तभी उसका क्षय है, नपुसकवेदी का भी उदय है और क्षय उसी समय है, पुरुषवेदी का तो उदय का समय लेना, क्षय तो नवक समय प्रबोध का बाद होगा, परंतु वो समझ लेना, फिर भी उसके पुरुष वेदी का जघन्य कब होगा, जघन्य स्थिति उसके उदय के अंतिम समय में, क्योंकि तब हम उसको वेदी कह रहे हैं, बाद में उसको अपगत वेदी कहेंगे, तहां उसकी स्थिति तो है अभी। और सामायिक संयत व छेदोपस्थापना वाले जीवों के क्षपणा के नवम गुण स्थान के अंतिम समय में, यानी क्षपक अनिवृत्तिकरण बादर, वहीं पर उसका मोहिनीका जघन्य स्थिति होती है। अतः इनके भी जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर नहीं होता। अंतर क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले तो सभी लिस्ट एक साथ दे दी, अब यहां अंतर क्यों? क्योंकि पहले समय में जघन्य होता है, इसलिए यहां भी अंतर नहीं है। विभंग ज्ञान में उपरिम ग्रहवेग के देव के आयु के अंतिम समय में मोहिनी की जघन्य स्थिति होती है। हमने देखा था अंतिम समय में वो मिथ्यात्व में आया, तो विभंग ज्ञान के साथ एक समय घटित हो गया था उसका, जघन्य करते करते अंतिम समय में निकालो विभंग ज्ञानी का कहा। हाँ, अभी हमने जो देखा था ना 24-23 पर होगा शायद, चौबीस पृष्ठ पर चौथी लाइन, तो विभंग ज्ञानी में किसके होती है? तो 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो उपरिम ग्रहवेग का देव आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर विभंग ज्ञानी हुआ, तो अंतिम एक समय के लिए विभंग ज्ञानी रहा, और तभी उसकी वो जघन्य है, विभंग ज्ञानियों के जघन्य है, इसलिए वहां भी अंतर घटित होने का सवाल नहीं है। अभी यहां आते हैं हम 52 पृष्ठ पर, इसलिए इनका अंतर नहीं है, बात सिद्ध होगी। विभंग ज्ञानी की भी अभी हमने बात देखी। अब पीतलेशा वाले और पद्मलेशा वाले परिहार विशुद्धि संयत के समान जानना, यानी जब हमने परिहार विशुद्धि संयत के अंतिम समय में घटित किया था, और वहां भी कैसा घटित किया था याद है अभी अभी? हाँ, क्षायिक समय दृष्टि दो बार श्रेणी चढ़ के उतरा है और फिर 33 सागर में गया है और वहां से मनुष्य में आया। हाँ, और अंतिम समय में वो सातवें गुणस्थान से जब श्रेणी चढ़ेगा तब की बात लेना, बाद में तो शुक्ल लेशा में चला जाएगा। आदेश की अपेक्षा नरक गति में ये ओघ के समान अंतर नहीं है, ये किस किस मार्गणा में है वो बात बता चुके है, तो वो आदेश की अपेक्षा अपने अपने में जघन्य स्थिति, फिर भी उसमें अंतर नहीं है, इतने कॉमन बात है, ये कथन सामान्य है, इसलिए उनको ओघ के साथ वो सारी लिस्ट बता दी। अब जहां अंतर हो सकेगा ये बात बताएंगे। आदेश की अपेक्षा नरक गति में मुनि की जघन्य स्थिति का अंतर कल नहीं है, तो किसका हो सकता है? अजघन्य का हो सकता है, यानी पहले अजघन्य था, फिर जघन्य हुआ और फिर अजघन्य। कहाँ होता है? पहले नरक में असंगी में से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो उसके द्वितीय समय में जघन्य होता है, विग्रह के द्वितीय समय में, पहले समय में अजघन्य है। तो कहते हैं जघन्य स्थिति का अंतर नहीं है, परंतु अजघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल एक समय यहीं पर वो घटित होगा। एक समय के लिए अजघन्य रहा, फिर जघन्य होकर फिर दोबारा अजघन्य हुआ। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी, नारकियों में अगर कहना है तो सामान्य से जो पहली पृथ्वी में है तो हम सामान्य में भी कहेंगे, विशेष कहना है तो पहली पृथ्वी में ही ये घटित होगा, नीचे के नरकों में नहीं। सामान्य देव, भवनवासी देव, व्यंतर देव, क्योंकि जहां वो उत्पन्न होते असंगी में से, ऐसे लीन, कार्मण कायोगी, अभी तीन समय वाला होगा, तीन समय वालों में वो नहीं घटित, कार्मण काय योग में अजगन्य का अब अपन तीन समय कहाँ वहाँ मिलते हैं उसको कर्मणकारी योग में, वो तो सूक्ष्म एक इंद्रियों में होगा। तो सूक्ष्म एक इंद्रियों में हो सकता है कि वो घटाते घटाते, हाँ पहले समय में अजगण्य के साथ है वो, दूसरे समय में जगण्य हुआ और फिर तीसरे समय में अजगण्य हो गया, वहीं पर घटित होगा जहाँ तीन समय होते हैं। हाँ तीन तीन मोड़। और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए, अनाहारक हो तो वो कार्मण का योग के समान है। सातवीं पृथ्वी में मुनि की जगन्य स्थिति का अंतरकाल नहीं है तथा अजगन्य स्थिति का जगन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। ये कब होता है? अंत में होता है। देखो हमने देखा था सातवीं पृथ्वी में गया, अंतर्मूर्त के पश्चात समय को प्राप्त किया और फिर अनंतानुबंधी की विषय योजना भी की, अंत में जाकर वो मिथ्यात्व में गया। अंत में उसकी जगन्य स्थिति थी, मिथ्यात्व में गया और अभी जो स्थिति बंधक किया वो कम किया। तो लगातार कम करता रहे तो अंतर्मूर्त और उसके बाद वो ज्यादा होगा, तो वहां उसके पहले तो उसका जगन्य है। अजगन्य में से जगन्य, दो समय पहले अजगन्य है, अंतिम समय में जगन्य हुआ और फिर उसने अंतर्मूर्त तक वो अजगन्य स्थिति बांधी, तो इसलिए वहां जगन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त तक वो जगन्य रहा। निकालो, कल हमने काल देखा था, जगन्य का काल, लगातार जगन्य रहने का काल, वो अजगन्य का अंतर होता होगा। जगन्य स्थिति का काल लेना है हमको। यहाँ हम 44-43 कहीं तो मिलेगा, वो एक इंद्रिय के पहले होगा नहीं, 40-41 में होगा। नारकियों में थर्टी एट में लेना, नीचे से तीन तीन छह सातवीं लाइन। जो नारकी भी अभी हमने देखा था, पेज 38, नीचे से सातवीं लाइन, सातवें नरक में मिला। हाँ विशेषार्थ के नीचे, यानी 38 पेज पर नीचे से सातवीं लाइन, सातवें नरक में उत्कृष्ट आयु वाला जो नारकी पर्याप्ति पूर्ण करके अंतर्मूर्त काल के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर दूसरे अंतर्मूर्त के द्वारा अनंतानुबंधी स्थिति सत्कर्म की विषय योजना करके, दोनों ही बार उसने वो तो स्थिति घटाई, जीवन भर सम्यक्त्व के साथ रहा तो एक एक निशय गलते गया और अंतर्मूर्त आयु शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ये तो अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में जाता ही है, फिर आयु वगैरह बंधेगा और मिथ्यात्व में मरेगा, तो मिथ्यात्व में गया, फिर पुनः मिथ्यात्व में जितने काल तक शक्य हो उतने काल तक स्थिति कितनी बांधी, सत्कर्म से हीन बंध करके, स्थिति सत्कर्म से हीन बंध करके, स्थिति बंध कितना किया, जितनी स्थिति घटाई थी उससे भी कम बंध किया, मिथ्यात्व में जाने पर भी जितने काल शक्य है, नहीं जितना कोई पॉसिबल है वहां का अंतर्मूर्त वहां। हाँ पुनः अगले समय में स्थिति सत्व सत्व स्थिति से अधिक स्थिति बंध करेगा, क्योंकि लगातार तो इतना कम नहीं कर सकता है, तो बाद में जितनी स्थिति है अभी जघन्य हुई थी उससे अधिक स्थिति बंद करेगा। उस जीव के जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय होता है, एक समय के लिए हुआ ना वो, और जो सत्ता में स्थित स्थिति ये एक समय कब होगा, जब तक वो कम बंद कर रहा था उसका अंतिम समय लेना, तब उसका जघन्य वाला मिनिमम पॉसिबल उस समय होगा एक समय के लिए। वहां क्या हो रहा है, तो स्थिति से कम बांध रहा है और स्थिति तो एक एक गल रही है। ऐसे जहां तक पॉसिबल है हम मान लेते हैं 100 समय तक किया, तो 100वें समय में उसकी जघन्य स्थिति होगी एक समय के लिए। अब कोई दूसरा ऐसा जीव लिया कि जो सत्ता में स्थित स्थिति के समान स्थिति वाले कर्म का बंध करता है, जघन्य स्थिति के 100वें समय में उसके बराबर जितनी थी उतनी हो गई, मिनिमम हो गई ना। अब जितना मिनिमम है सत्ता में जितना है उतना ही बंध करता है, तो उतनी 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 सत्ता लगातार अंतर्मूर्त तक होगी, तो जघन्य का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त घटित होगा। तो जो सत्ता में स्थित स्थिति के समान स्थिति वाले कर्म का बंधक करता रहता है उसके जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है, उसके बाद और वो अजघन्य करेगा फिर, तथा जघन्य स्थिति के बाद जो अंतर्मूर्त काल शेष रह जाता है वह अजघन्य स्थिति का जघन्य काल है। पहले अजघन्य किया, जहां तक बंद है वहां एक समय के लिए उसने जघन्य किया, फिर एक समय जघन्य करके हो सकता है अजघन्य हुआ, तो अजघन्य का अंतर कितना हुआ, एक समय। कोई जीव ऐसा है कि उतनी ही स्थिति समान बंध करता रहे तो अंतर्मूर्त, तो पहले अजघन्य था फिर अंतर्मूर्त तक जघन्य हुआ और दोबारा अजघन्य हुआ, तो अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना हुआ, एक अंतर्मूर्त। पहले एक समय वाला घटित किया था, अब जितना उतना ही बंद करने वाले जीव में अंतर्मूर्त घटित होता है, ये हमने स्वामित्व देखा कैसे हो सकता है। वही बात यहाँ उन्होंने डायरेक्ट बता दिया 52 पृष्ठ पर, फिर पढ़ते इसको विशेषार्थ के ऊपर की दूसरी लाइन, 7वीं पृथ्वी में मोहन्य की जघन्य स्थिति का अंतरकाल नहीं है। जघन्य स्थिति की किसके होती है, अभी हमने जो देखा समय तो प्राप्त किया, विषय योजना की आयु के अंत में मिथ्यात्व में आया है, और फिर मिथ्यात्व आने पर उसने कम स्थिति बंद किया है जब तक शक्य है, उसके अंतिम समय में वो जघन्य है, तो दोबारा फिर अजघन्य होकर फिर जघन्य नहीं कर सकता है, तो जघन्य का तो अंतर नहीं है परंतु अजघन्य का तो अंतर घटित होता है। तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, वो कैसे होता है अभी अभी हमने देखा 38 पृष्ठ पर हम देखा है अभी। विशेषांक, जो असंगी जीव नरक में 2 विग्रह से उत्पन्न होता है उसके दूसरे विग्रह के समय जघन्य स्थिति संभव है। अतः सामान्य से नारकियों के अजघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय कहा, क्योंकि पहले समय में अजघन्य था, दूसरे समय में जघन्य हुआ, तीसरे समय में फिर अजघन्य हुआ, इसलिए अजघन्य का अंतर एक समय, मिनिमम कहो या मैक्सिमम कहो उससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे नारकी के प्रथम और तृतीय आदि समयों में अजघन्य स्थिति हुई और दूसरे समय में जघन्य स्थिति रही, अतः अजघन्य स्थिति का अंतरकाल एक समय प्राप्त हो गया। अब ऐसी बात कहाँ कहाँ घटित होती है, इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी सामान्य देव, जैसे हमने सामान्य नारकी कहा वैसे सामान्य देव, परंतु वहां अपेक्षा कौन सी है, भवनवासी और व्यंतरों की, भवनवासी व्यंतर ये विशेष कथन करने के लिए, कारमाण काय योगी और अनाहारक जीवों के अजघन्य स्थिति के जगन्य अंतर काल के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए। एक समय को घटित कर लेना चाहिए। अब जो सातवें नरक की बात हमने अभी पढ़ी उसको फिर दोबारा बता रहे। सातवें नरक में जब आयु में अंतर्मुहूर्त काल शेष रह जाता है तब कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक जघन्य स्थिति का प्राप्त होना संभव है। वो कैसे संभव है अभी हमने देखा था। तथा इस नारकी के इस जघन्य स्थिति के पश्चात पुनः अजघन्य स्थिति हो जाती है। अभी उसके लाइफ बाकी है और उसके अजघन्य फिर दोबारा होती है। पहले अजघन्य थी, जघन्य हो गई और दोबारा अजघन्य हुई। अतः यहाँ अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त बन जाता है। तथा जघन्य स्थिति दो बार प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसका अंतरकाल नहीं रहता। अब तिर्यंच गति में है, गति की अपेक्षा ले रहे हैं पहले में। पहले तिर्यंच गति में मोहनीय की जघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक है। तिर्यंचों में जब जघन्य स्थिति कहेंगे, तिर्यंचों में जघन्य स्थिति कब होगी? हाँ, एक इंद्रियों में होगी। तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल एक समय है। अजघन्य का अंतर यानी जघन्य का काल और जघन्य का अंतर यानी अजघन्य का लगातार का काल। तो अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त तक ही वो जघन्य रह सकते हैं। इसी प्रकार ये जो हमने देखी है यही बात, कौन सी? जघन्य स्थिति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक और अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, ये बात और कहाँ कहाँ घटित होती है? तो मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ एकेंद्रीय है इन मार्गणाओं में। एकेंद्रियों के तिर्यंचों के समान जानना चाहिए। जो बात हमने तिर्यंचों के लिए कही है वही एकेंद्रियों में होगी। बादर एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक, वो पर्याप्तक हुआ, पर्याप्तक बादर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक और सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक जीवों के मोनि की जघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, जैसे हमने तिर्यंचों में घटित किया था। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। यहाँ असंख्यात तो वो नहीं लेना, एकेंद्रिय में जब कहेंगे तो होगा, अन्यथा जो अपनी अपनी जो है बादर एकेंद्रियों की है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों की, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेना। तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, ये तो सब जगह ऐसा ही लिया। अजघन्य के लिए अंतरकाल, जो जघन्य का उत्कृष्ट काल है वो अजघन्य का अंतरकाल है। ये याद है, ये इनका उत्कृष्ट काल कितने, अभी हम जो ऊपर लिस्ट लिखी थी, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण। एकेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति हमने असंख्यात लोक, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा ना, असंख्यात लोक देखा, पुद्गल परिवर्तन है, असंख्यात लोक वो हमने घटित किया था। जो सूक्ष्मों की उत्कृष्ट काल है असंख्यात लोक, बादर एकेंद्रियों में अंगुल का संख्या तो अभाव, और बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में खाली पर्याप्त हाँ संख्या 1000 वर्ष बादर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक अंतर्मूल सूक्ष्म एकेंद्रियों में असंख्यात लोक सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों में अंतर्मूर्त इसी प्रकार अभी काय मार्गणा में इसी प्रकार यानी जैसे अभी हम देख रहे हैं तिर्यंच गति की बात परंतु ऐसा ही कथन और कहाँ कहाँ है तो एकेंद्रियों में घटित किया अब काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी कायिकों में भी यही बात होगी पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर कायिक जीवों के जानना चाहिए पर इतनी विशेषता है इनके मोनि की जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए इनकी उत्कृष्ट स्थिति याद है कायिकों की उत्कृष्ट स्थिति हाँ? कर्म स्थिति प्रमाण निकालो निकालो कितना पेज अभी याद नहीं है मगर 37 था कि क्या था कहाँ पर 39 में विशेषार्थ में हाँ वही तो मैं मेरे यहाँ 31 लिखा है और मैं 39 में फिर देखा 31 में है विशेष अर्थ में लिखा है नीचे से चौथी लाइन पांचवी में लिखा है पृथ्वी का एक जल का एक की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोग पृथ्वी का इन जनरल लिया है पर बादर पृथ्वी का एक और बादर जल का एक जो लिया उन्होंने अच्छा वहाँ अकेले कायिक लिए असंख्यात लोग वहां भी लिए और जब बादर पृथ्वी का एक कहेंगे तो उत्कृष्ट कर्म स्थिति है थी पर्याप्तों में क्योंकि पृथ्वी का एकों में सूक्ष्म जीव भी है ना इसलिए उसको असंख्यात लोग लिया पेज 31 पर रेफर करना इसका वनस्पति कायिक जीवों के एकेंद्रियों के समान जानना चाहिए वनस्पति कायिकों में कितना देखा था हमने याद है ये जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जो घटित होता है वो वनस्पति कायिकों में होता है मेरे ख्याल से देखो ये वनस्पति कायिकों में 32 पृष्ठ पर एकेंद्रियों के समान है ना वो असंख्यात यहाँ असंख्यात लोक होगा परंतु उनकी जनरल स्थिति लेनी है तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होगा अब 53 पृष्ठ पर आते हैं बढ़ेंगे ना आगे नहीं समझा हाँ आगे बढ़ेंगे कि फिर दोबारा देखें औदारिक मिश्र कायोगी जीवों के मोनि की जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है जघन्य स्थिति का अंतरकाल यानी जघन्य हुआ फिर अजघन्य हुआ फिर जघन्य हुआ तथा अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले जीवों के सातवीं पृथ्वी के समान है अब यहां विशेष अर्थ में देख लेते दोबारा उत्कृष्ट स्थिति के समान आदेश से जघन्य स्थिति के संबंध में भी यह नियम समझना चाहिए कि जिसके जघन्य स्थिति के पश्चात अजघन्य स्थिति हो जाती है उसे पुनः जघन्य स्थिति को प्राप्त करने में कम से कम अंतर्मूर्त काल अवश्य लगता है। हमने उत्कृष्ट स्थिति में भी देखा था, कोई उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, बाद में अनुत्कृष्ट बांधता है, तो लगातार अंतर्मूर्त तो जाएगा जब वो दोबारा उत्कृष्ट करेगा। अब यहाँ जघन्य में भी ऐसा ही समझना, ये जघन्य के बाद फिर करने वाले कौन होते हैं, वो एकेंद्रिय आदि होंगे। यही कहते हैं कि जिसके जघन्य स्थिति के पश्चात अजघन्य स्थिति हो जाती है ऐसी जीव लेना है। ये जो सूक्ष्म सांप्राय वगैरह जो जघन्य के बाद अजघन्य होगी ही नहीं, उनकी बात नहीं है, जिनके जघन्य होने के पश्चात दोबारा अजघन्य होती है ऐसे जीवों में ये नियम है। क्या अंतर्मूर्त तक तो वो फिर दोबारा जघन्य नहीं करेगा, अंतर्मूर्त तो बीच में बीतेगा ही बीतेगा। तो कम से कम अंतर्मूर्त काल अवश्य लगता है। तथा जिसने तिर्यंश पर्याय में जघन्य स्थिति को प्राप्त किया, पुनः वह अजघन्य स्थिति को प्राप्त करके यदि निरंतर उसी के साथ रहे तो एक बार जघन्य हुआ और फिर अजघन्य किया और लगातार अजघन्य 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 रहे तो पुनः जघन्य स्थिति के प्राप्त करने में अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण काल लगता है। यह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं लेना है, भले घूमने का है परंतु सूक्ष्म बादर दोनों मिलके उतना काल होता है। परंतु जघन्य के लिए क्या आवश्यक है, बीच में वो जघन्य होगा, फिर असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो जघन्य फिर होगा ही, इतना ही अंतर है उसका। उसके लिए और कोई कारण नहीं ढूंढना, लगातार रहने का काल है उसका एकेंद्रियों में, तो बीच में इतने मैक्सिमम इतने काल के बाद फिर वो दोबारा जघन्य होगा ही। अतः तिर्यंच एक कोई नहीं है, वो सामान्य से एकेंद्रिय में है और इतने काल में तो वो कहीं भी रहे इतने काल के पश्चात तो वो जघन्य करेगा ही करेगा। यानी वैसे उसके जैसे हम कहते ना अंगुल के असंख्यात विभाग तक वो आहारक रह सकता है, तो उसके बाद वो तो नियम से अनाहारक हो ही जाएगा। अब वो कौन से पर्याय है वैसी बात नहीं रही, वैसे यहाँ पर ही एकेंद्रिय है, इतने पश्चात जो कोई यथा योग्य है असंख्यात लोक के बाद वो तो जघन्य करेगा ही। एकेंद्रियपना तो चलता ही रहेगा, वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, पर इतने असंख्यात लोक के मैक्सिमम काल के बाद वो जघन्य करेगा ही करेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी जो कोई, क्योंकि क्या होता है वो बंद की अपेक्षा हम पर्याप्त अपर्याप्त सोचते हैं, परंतु वो अन्य पर्याय में से उसमें आता है, ऐसी भी बातें उसमें घटित हो सकती हैं। वो हत समुत्पत्ति के कारण उसके जघन्य होता है और उस समय उसका बंध कितना चलेगा उस पर ही वो निर्भर है। एकेंद्रिय ही करता है और यहाँ जो इतना काल है असंख्यात लोग, जघन्य कब कहेंगे हम, कम स्थिति करते करते और पहले वाली घटती चली जाएगी और दोबारा वो ज्यादा बांधे उसके पहले वाला समय लेना, वो घटना भी चाहिए। हाँ अभी ऐसे यहाँ कोई खास बताया नहीं है, अपर्याप्तों की आयु इतनी कम है। हाँ जो कोई, हाँ अभी वो वासुओं वगैरह हमने निकाला था ना, उसको निकाल के देखेंगे तो उसमें शायद आपको कोई उसका यानी अनुमान हो सकता है। यहाँ तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, क्योंकि हम अनुमान से बोलना अलग बात है, और हाँ स्पेसिफिकली लिखेंगे तो ही हम कह सकते हैं ना। देखो असंख्यात लोक प्रमाण काल लगता है, यानी एक बार जगन्य हो और दोबारा निरंतर अजगन्य चलता रहे और फिर दोबारा अजगन्य हो तो असंख्यात लोक के पश्चात हो जाएगा। अतः तिर्यंचों में जगन्य स्थिति का अंतर कितना, जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, किसके बारे में चल रही बात, जगन्य स्थिति के बारे में चल रही है। जगन्य स्थिति का अंतर यानी पहले जगन्य की, फिर अजगन्य हुआ और फिर जगन्य किया, तो मिनिमम काल अंतर्मूर्त तो लगेगा ही लगेगा। और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होता है, यह सिद्ध हुआ। तथा जघन्य स्थिति का, जघन्य काल एक समय काल बता रहे, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है। जो जघन्य स्थिति का काल है वो अजघन्य स्थिति का अंतर है, तो जघन्य स्थिति का काल एक समय हो सकता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होगा। अतः तिर्यंचों में अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा। मूल में गिनाई गई मत्य ज्ञानी आदि मार्गणाओं में अंतरकाल प्राप्त करने की यही विधि जानना, मत्य अज्ञानी आदि जो बातें बताई है उनमें भी यही अपेक्षा लगानी है उनमें। अतः इनमें जघन्य और अजघन्य स्थिति के अंतर काल को सामान्य तिर्यंचों के समान कहा। तथा आगे जो बादर एकेंद्रियादिकों के जघन्य और अजघन्य स्थिति का अंतर काल कहा, उसमें केवल जघन्य स्थिति के उत्कृष्ट अंतर काल में ही विशेषता है, वो अपने अपने स्थिति में से थोड़ा कम ऐसा हम कहा था। शेष सब कथन सामान्य तिर्यंचों के समान है। बात यह है कि इन बादर एकेंद्रियादिक की आदिक में वो सब जो उन्होंने लिस्ट बताई, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त वगैरह वगैरह, उत्कृष्ट काय स्थिति भिन्न भिन्न है। अतः इनमें जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण ही कहना चाहिए। यहां तक बात ख्याल में आई। अब औदारिक मिश्र काय योग का, यानी वो काय योग का काल कितना है अंतर्मूर्त, तो औदारिक मिश्र काय योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अतः इसमें जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा। जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतर ने उसमें आया जघन्य स्थिति से, फिर अजघन्य हुई और फिर जघन्य हुए, उसके योग्य जघन्य जो है औदारिक मिश्र के योग्य जघन्य। पहले भव में जो जघन्य करके इसमें जन्मा है, औदारिक मिश्र तो पर्याप्तों का भी औदारिक मिश्र हो सकता है, निकालो औदारिक मिश्र में स्वामित्व। अब औदारिक मिश्र में उत्कृष्ट का स्वामी हमने देखा था, देव में से आया था उत्कृष्ट बांधकर, अब यहाँ तो हत समुत्पत्ति करके यहाँ जन्म चाहिए। कहाँ देख रहे थे, जघन्य स्थिति सत्व किसके होता है, पेज नंबर 23 के आसपास कहीं होगा। औदारिक मिश्र आहार वैकरिक मिश्र औदारिक मिश्र का अलग से दिया नहीं, एकेंद्रियों के समान होगा कहीं, कहां पर 35 में, हाँ वीर्यंच गति में आता समुद्र इसी प्रकार एकेंद्रिय औदारिक मिश्र। हाँ 35 नंबर का पॉइंट 22 पृष्ठ पर निकालो। देखो जो कोई एकेंद्रिय जीव हत समुत्पत्ति को करके जब तक शक्य हो तब तक हत समुत्पत्ति की यानी सत्ता की स्थिति कम से कम कर दी, उसके पास जब तक शक्य हो तब तक सत्ता में स्थित मोहनीय की स्थिति से कम स्थिति वाले कर्म का बंध किया। कम बंध करता है तो क्या है, हत समुत्पत्ति तो किया है, बंध कम हो रहा है तो एक एक निशे गलते चले जाएगा। तदनंतर काल में सत्ता में स्थित मोहनीय की स्थिति के समान स्थिति वाले कर्म का बंध करेगा। जब समान करने लगेगा तो उतना का उतना रहेगा। जब उसने बंध कम किया था तो उसके अंतिम समय में जघन्य हुआ, फिर लगातार कम सत्ता के समान करने लगे तो जघन्य है उतना का उतना रहेगा अंतर्मूर्त काल तक। उसके मोहनीय का जघन्य स्थिति सत्व होता है, यानी मोहिनी का जघन्य स्थिति सत्व एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक होगा। तो कहते इसी प्रकार एकेंद्रिय सावर का वगैरह औदारिक मिश्र का योगी में भी ऐसे ही घटित किया उन्होंने। यही बात अभी यहाँ हम औदारिक मिश्र की पढ़ रहे थे। देखो निकालना भी औदारिक मिश्र 53 पृष्ठ पर। हाँ हो सकता है ना। अब यहाँ किसका अंतर किया उन्होंने, जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर का अंतर्मूर्त है। जघन्य का अंदर रहने अजघन्य वो कर रहा है, जघन्य के साथ यहाँ आया है और अजघन्य कर रहा है। जघन्य का उसका काल पूरा हो फिर अजघन्य शुरू हुआ फिर दोबारा उसने जघन्य किया तो यहाँ पॉसिबल है। अब यही बात विशेषार्थ में नीचे से दूसरी लाइन में औदारिक मिश्र का योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इसमें जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मूर्त का है। उत्कृष्ट अंतर की बात है, वो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मूर्त घटित होते हैं। अजघन्य का तो हमने देखा था एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक होता है। अब कृष्ण नील व कापोतलेशा वाले एकेंद्रिय जीवों के मोहनीय की जघन्य स्थिति होती है। हाँ तभी तो अंतर होगा ना, दो बार जघन्य हुए बिना अंतर ही घटित नहीं होगा। दो भाव में बीच में वो लगातार औदारिक मिश्र दो भाव नहीं लेना है कि वो लेना है यहाँ पर, हो सकता है फिर भी दो भाव लेने की जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि औदारिक मिश्र का वो औदारिक मिश्र का लगातार रहने का काल भी पकड़ेंगे तो भी अंतर्मूर्ति घटित होता है। लब्ध्य पर्याप्तों का लगातार काल है वो भी अंतर्मूर्त है। हाँ। अच्छा एक ही भोग की बात करें आप। हाँ जब हमको उत्कृष्ट अंतरकाल घटित करना है ना, जघन्य स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल जो है तो ये अनेक भवों का लेना, उत्कृष्ट घटित करना है तो अनेक भवों का लेना। कैसे लेना, रुजगति से जा रहा है, लब्धि अपर्याप्तक है तो पहले भी औदारिक मिश्र है, फिर औदारिक मिश्र है, फिर औदारिक मिश्र है, फिर औदारिक मिश्र है, ऐसे लगातार भी कितना करता रहे अंतर्मूर्ति होगा। तो उत्कृष्ट के लिए उसको ज्यादा लेना, जघन्य भी उसका अंतर्मूर्त लिया था तो जघन्य जब अंतर्मूर्त लेते हैं तो एक भाव का औदारिक मिश्र ले सकेंगे। मिश्र अवस्था में उत्कृष्ट बंध नहीं होता, जगन्य होने में कोई बाधा नहीं है। कृष्ण नील व कापोत्लेश वाले 54 पृष्ठ पर आए। एकेंद्रीय जीवों के मुनि की जघन्य स्थिति होती है, यह नरकों में नहीं घटित करना है। क्यों? वहां की जघन्य तो पंचेंद्रियों के योग्य वाली होगी, वो जो आयु के अंत में हमने घटित की थी। हाँ, वो अंत कोड़ा कुड़ी होगी। एकेंद्रियों की वो जो एकदम हत समुत्पत्ति कर देते हैं, तो एकेंद्रियों में उक्तलेशाओं का काल अंतर्मूर्त है। जो अजगन्य स्थिति के जगन्य काल से छोटा है, यहां उसकी बात की योग का औदारिक मिश्र में ऐसा नहीं कहा था। तो कहते एकेंद्रियों तो कृष्ण नील कपोत होती है, और वो भी अंतर्मूर्त में पलटेगी। तो उक्त लेशाओं का काल जो अंतर्मूर्त है, जो अजघन्य स्थिति के जघन्य काल से छोटा है, हमने क्या देखा था, जघन्य हो जाता है, फिर अंतर्मूर्त तक अजघन्य रहता है, उसके पहले तो जघन्य नहीं हो सकता। जरूरी नहीं जघन्य होना चाहिए, परंतु जघन्य होने के लिए जो अंतर्मूर्त चाहिए, उतना अंतर्मूर्त यहां नहीं पाया जाता, उससे भी यह लेशा का काल कम है। अतः जघन्य स्थिति का अंतर नहीं है, परंतु औदारिक मिश्र में ऐसा नहीं कहा था। औदारिक मिश्र में तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त घटित किया था उन्होंने, परंतु उक्त लेशाओं का काल जघन्य स्थिति के काल से बड़ा है, जघन्य स्थिति के काल से बड़ा है, जघन्य स्थिति का अंतर नहीं होता है, फिर भी जघन्य स्थिति का काल उससे छोटा है, तो अजघन्य का अंतर घटित होगा। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है ना, ख्याल में नहीं। फिर दोबारा पहली लाइन से, एकेंद्रियों में उक्त लेशाओं का काल अंतर्मूर्त है, जो अजघन्य स्थिति के जघन्य काल से छोटा है। हम मान लेते उक्त लेशा का काल 100 समय है, मान लेते हैं, और अजघन्य स्थिति लगातार चलती रहे, तो उसका जघन्य काल जो है, तो अजघन्य स्थिति के जघन्य काल से छोटा है, हम मान लेते, कितना मानना है, 150। अच्छा, तो वहां पहले जघन्य था, फिर अजघन्य में 100-150 समय तक रहना चाहिए, तो ये यहां घटित नहीं होगा। इसलिए जघन्य स्थिति का अंतर नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था एक बार जघन्य स्थिति होने के बाद अजघन्य होती है, तो अंतर्मूर्त के पहले जघन्य नहीं होती, तो हमने यहां 150 समय मान लिया है, तो उतना तो वहां घटित नहीं होता। अब कहते परंतु उक्त लेशाओं का काल जघन्य स्थिति के काल से बड़ा है, लगातार जघन्य स्थिति हम मान लेते 75 समय, और उसका काल तो 100 समय है, तो वो तो घटित होगा, वो अजघन्य का अंतर होगा। जघन्य का काल है, वो अजघन्य का अंतर होगा। अतः अजघन्य स्थिति का जघन्य अंतर 1 समय, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त घटित हो जाता है, जो सातवीं पृथ्वी के समान है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। ये अंतर में बहुत ज़रा डिफिकल्ट होता है, एक का काल है और एक का अंतर है, एक का काल है एक का अंतर है। अब अंतरानुगम का अंतर शुरू हो गया, क्या अंतरानुगम का अंतर चालू हो गया। अब आगे जब कभी अंतर की बात आएगी, तो उसका अंतर समाप्त होगा। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम का कथन करते हैं। नहीं समझे? अभी अंतरानुगम हम पढ़ रहे थे, अंतरानुगम समाप्त हुआ। जब दोबारा अंतरानुगम शुरू होगा तो ये अंतर का अंतर समाप्त हो जाए। समाप्त नहीं होवे ऐसा अगर चाहते हैं तो एक केंद्र में जाना पड़ेगा। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम का कथन करते हैं। ये भंग विषय ये जो नाना जीवों की अपेक्षा किसमें चल रही है बात सब? पेज नंबर 7 में। ये सब मूल स्थिति विभक्ति की बात चल रही थी। हम देखते अभी हमने क्या क्या देखा, सर्व विभक्ति नो सर्व विभक्ति, सातवें पेज पे नीचे की लाइन, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, सादि अनादि, ध्रुव अध्रुव, ये तो बातें हमने विभक्ति के बारे में देखी। उसके बाद एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व देखा, तो स्वामित्व में हमने उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति का स्वामी कौन है वगैरह वगैरह देखा, अनुत्कृष्ट ये जघन्य का कौन है, फिर काल देखा उनका लगातार रहने का, और अंतर अभी अभी हम देख चुके। अब इसके आगे नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय चलेगा, किसमें? मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति की बात चल रही, अकेले मूल प्रकृति नहीं कहना, क्या कहा यहाँ, मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति, जिसमें हमने उत्कृष्ट जघन्य अनुत्कृष्ट वगैरह वगैरह बातें देखी थी। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम चलेगा, उसमें भी नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग विषय के कथन में यह अर्थपद है, उत्कृष्ट भंग विषय ने उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव, नाना जीवों की अपेक्षा भी बात है, जब एक जीव की अपेक्षा थे हम स्वामित्व कहते थे, अब नाना जीवों की अपेक्षा वो है कि नहीं है तो कितने ऐसी बातें होगी। तो जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले है वे अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, वो तो आसान है ना। और जो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं वे उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, इस अर्थ पद के अनुसार निर्देश दो प्रकार का है, यानी कुछ तो उत्कृष्ट वाले कुछ अनुत्कृष्ट वाले, ऐसा ही कथन होगा ना, क्योंकि जो उत्कृष्ट वाले वो अनुत्कृष्ट नहीं, जो अनुत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट नहीं है। अब इस अपेक्षा से कथन होगा कि निर्देश दो प्रकार का है, ओह निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओह की अपेक्षा कदाचित सभी जीव मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है। पॉसिबिलिटी क्या है? कदाचित सभी जीव, यानी किसी एक को भी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति नहीं है ऐसा होगा, रहित है। कदाचित बहुत से जीव मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है, और एक जीव मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है, यानी कदाचित एक भी नहीं है और कदाचित एक है। कदाचित बहुत से जीव मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है, और बहुत से जीव मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं। कदाचित नहीं है, पूरे ओक की अपेक्षा ने सभी चारों गतियों की अपेक्षा बात की कि ऐसा भी हो सकता है कि उत्कृष्ट विभक्ति वाला एक भी नहीं है। दूसरा भंग, उत्कृष्ट विभक्ति वाला एक है, तीसरा उत्कृष्ट विभक्ति वाला अनेक है, ये रहित भी अनेक है और सहित भी अनेक है, ऐसा कहा। तीसरा भंग यानी उत्कृष्ट की अपेक्षा तीन भंग, कोई नहीं है, एक है और अनेक है, कम है। हाँ, यानी अनुत्कृष्ट वाले तो सभी होंगे। जब हम कहते हैं उत्कृष्ट वाला कोई नहीं है तो उसका अर्थ क्या है? सभी अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। हम सबको 70 कोड़ावड़ी वाला भंग करा देते हैं ना मार्ग देते हैं वैसे सबको इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति की अपेक्षा 3 भंग होते तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति अपेक्षा कदाचित सभी जीव मुनि की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं। दूसरा भंग कदाचित बहुत से जीव वो जीव बराबर करना मोनी की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और एक जीव मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से सॉरी फिर पढ़ती हूँ। पहला कौन सा लिया? सभी जीव अनुत्कृष्ट वाले। दूसरा भंग बहुत से जीव मोनी की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और एक जीव मोनी की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है। जो हमने ऊपर लिया था वो यह अनुत्कृष्ट की अपेक्षा बात करनी है। वहां उत्कृष्ट से सहित कहा था, यहाँ अनुत्कृष्ट से रहित कहेंगे। और तीसरा भंग बहुत से जीव मोनी की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और बहुत से जीव मोनी की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित है। ये 3 भंग होते हैं। इसी प्रकार सभी नारकी यानी ऐसा ही कथन कहाँ कहाँ हो सकता है? सभी नारकी, सभी तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, ये 3 प्रकार के मनुष्य सामान्य देव, भवनवासी उनसे लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, 6 काय वाले, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैक्रिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, 3 वेद वाले, क्रोधादि 4 कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता करना श्रत हुआ, श्रुता ज्ञानी, श्रत हुआ उसको श्रुता करना, विभंग ज्ञानी, फिर अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरि ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, छोलेशा वाले, भव्य अभव्य, सम्यक दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी, स के ऊपर बिंदी, असंगी, आहारक और नाहारक जीवों के कहना चाहिए। जब हमने उत्कृष्ट का स्वामित्व देखा था तो जब मार्गणा की बात आती है तो मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट लेना, क्योंकि हाँ हम 70 कोड़ा कोड़ी वाला ही नहीं समझना। अभी एक इंद्रियों की बात की तो देव में से जन्मने वाला हमने देखा था, तो जहाँ जो पॉसिबल है स्वामित्व, परंतु यहाँ नाना जीव है ये बात ख्याल में लेना है। ऐसा ही कथन कि सभी अनुत्कृष्ट वाले हो गए या बहुत से अनुत्कृष्ट और एक अनुत्कृष्ट से रहित यानी उत्कृष्ट वाला होगा, और ये वे भी बहुत ये भी बहुत ऐसा हो सकता है। जब मार्गणा की बात है तो मार्गणा के योग्य जो उत्कृष्ट बताया था स्वामित्व, उस अपेक्षा से लेना यहाँ पर। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति पूर्वक 8 भंग होते हैं और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति पूर्वक भी 8 भंग होते हैं, क्योंकि ये सांतर मार्गणा है। इसी प्रकार जो जो अभी सांतर मार्गणाएं हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी तो एक भी नहीं होगा, हाँ कभी इसका एक होगा, कभी उसका एक होगा, ऐसे भी अनेक ये भंग हो सकते हैं, 8 भंग बताए उन्होंने। इसी प्रकार वैकृत मिश्र कायोगी, आहारक कायोगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, ये सारी सांतर मार्गणाएं हैं। कैसे? वैकिरिक मिश्र का योग भी सांतर है, आहारक आहारक मिश्र भी सांतर है, अपगत वेदी जो है, अपगत वेदी में किसको लेना है यहाँ पर? उत्कृष्ट में, उत्कृष्ट का चल रहा है ना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, उपशम श्रेणी में लेना। हाँ, अकषायी स्थिति की बात है यहाँ पर, कितनी विभक्ति है उसकी बात नहीं, मूल स्थिति विभक्ति चल रही है। ये 24 से 28 तो हमने प्रकृति विभक्ति में देखे थे। उपशम श्रेणी में उत्कृष्ट होगा अपगत वेदी। हाँ, किसके ज्यादा है वो आप बता रहे। हाँ, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी मार्गणाएं बताई है वो सांतर होगी। सांतर है, होगी ने? सांतर होती है इस अपेक्षा से। विशेषार्थ, निश्चित सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के द्योतक वाक्य को अर्थपद कहते हैं। यानी जो रियलिटी बताने वाले हैं वो अर्थपद है। तो उन्होंने पहले ही रियलिटी क्या बताई दी थी, अर्थपद क्या बताया था कि जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले वो अनुत्कृष्ट नहीं, जो अनुत्कृष्ट वाले वो उत्कृष्ट नहीं। ये उन्होंने एक फैक्ट बता दी, जिसको फैक्ट कहेंगे। तो निश्चित सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के द्योतक वाक्य, तथ्य वाक्य कहेंगे, फैक्ट कहेंगे, उसका अर्थपद कहते हैं। यहाँ निश्चित सिद्धांत यह है कि जो उत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं वे अनुत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं होते, और जो अनुत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं वे उत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं होते। इससे यह व्यवस्था फलित हुई कि उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों से अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले जीव भिन्न नहीं है। अविभक्ति डाला है, क्या कहा है? जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं उन्हीं को अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से रहित कहेंगे, या अनुत्कृष्ट स्थिति के अविभक्ति वाले कहेंगे, एक ही बात है। और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों से उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले जीव भिन्न नहीं है। फिर भी दो बार भंग बताए उन्होंने। फिर भी एक बार उत्कृष्ट स्थिति वालों को और दूसरी बार अनुत्कृष्ट स्थिति वालों को मुख्य करके भंगों का संग्रह किया जाए तो प्रत्येक की अपेक्षा तीन तीन भंग प्राप्त होते हैं। जो वेग भंग है वही ये तीन है, फिर भी मुख्यता उनके उत्कृष्ट के कथन में उनकी मुख्यता से बताया और यहाँ अनुत्कृष्ट की मुख्यता से बताया। बात तो वही की वही है जो मूल में गिनाए हैं। बात यह है कि उत्कृष्ट स्थिति वाला जीव कदाचित एक भी नहीं रहता तथा कदाचित एक होता है, कदाचित अनेक होते हैं। ये तो तीन भंग हुए। अब यदि इन तीन विकल्पों को मुख्य करके भंग कहे जाते हैं तो उनकी सूरत निम्न प्रकार होती है। पहला जो भंग है वो कदाचित सब जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं। उत्कृष्ट का नाम लेना है, अनुत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं सभी, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं। दूसरा भंग, बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं और एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला होता है। और तीसरा भंग, कदाचित बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं और बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं। यह तो उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा कथन हुआ। अब यदि इसके स्थान में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों को मुख्य कर देते हैं और उत्कृष्ट स्थिति वालों को गौण, तो उन्हीं भंगों की शक्ल निम्न हो जाती है। पहला भंग कैसा? कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं। वहां क्या कहा था हमने? सभी उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले, नाम उत्कृष्ट का लिया परंतु सभी अविभक्ति वाले कहा था। अब यहां नाम अनुत्कृष्ट का लिया परंतु सभी अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते कहा। कदाचित बहुत जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला होता है। तीसरा भंग, कदाचित बहुत जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और बहुत जीव अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं। जो पहले तीन कहे वही ये तीन है, किसका नाम मुख्य लिया उसकी अपेक्षा से कथन अलग अलग है, इसलिए तीन और तीन अलग बताए। सब नारकियों से लेकर, अभी जो हमने वहां मार्गणाएं देखी थी, सब नारकियों से लेकर अनाहारकों तक मूल में जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह ओघ प्ररूपणा बन जाती है। ये बीच में दंड नहीं चाहिए, कॉमा लगाए तो चले। ये जो पृष्ठ संख्या 54 पर शुरू हुआ था ना, नीचे से पांचवी लाइन से, सभी नारकी सभी तीर्यंज सामान्य मनुष्य आदि आदि, 55 पेज पर अनाहारक लिखा था चौथी लाइन में। ये जो सारी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यही कथन बन जाता है, जो अभी हमने ओग में कथन किया ऐसा ही कथन इनमें भी होता है कि कभी हो सकता है उत्कृष्ट वाला एक भी नहीं है, कभी हो तो एक होगा, कभी होगी तो अनेक होंगे। अर्थात उन मार्गणाओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों की अपेक्षा तीन तीन भंग बन जाते हैं, अतः इनकी प्ररूपणा को ओघ के समान कहा। किंतु लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य यह सांतर मार्गणा है, अतः इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों में से प्रत्येक के आठ आठ भंग हो जाते हैं, कभी दोनों भी नहीं होंगे, अभी वो बताएंगे कौन से आठ होते हैं। इसी प्रकार और जितनी सांतर मार्गणाएं हैं उनमें तथा अपगत वेदी, अकषायी और यथाख्यात संयत, इन तीन मार्गणाओं में भी आठ आठ भंग प्राप्त होते हैं। वे आठ भंग इस प्रकार है। एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला, दूसरा भंग अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, तीसरा एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला और चौथा अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, पांचवा एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला, दोनों के एक एक, फिर एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, फिर सातवां अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला। यहाँ ऐसा बन सकता है उल्टा, जो थोड़े ही होते हैं ना गिने चुने। और आठवां भंग अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, अनेक है इतना ही लेना, भले वो चार हो गए और ये 20 हो गए, फिर भी अनेक हो गए ना दोनों। इस तरह ये आठ भंग होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट भंग विषय समाप्त हुआ। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति के बारे में जो भंग विषय है नाना जीवों की अपेक्षा, वो यहाँ समाप्त होता है। अपना समय भी समाप्त हुआ। अच्छा, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। लक्ष्मी में